प्रकाशवती पाल, नेपथ्य में यशपाल। यशपाल से भी पहले मेरा सामना प्रकाशवती से हुआ था। उनका पत्र भी मुझे यशपाल से पहले मिला और उनसे मिलना भी पहले हुआ। यशपाल के पत्र में जो पत्र है, उनकी शुरुआत से पहले जो पत्र मुझे मिला था वह प्रकाशवती जी का ही था। यहाँ तक याद पड़ता है, यशपाल को पहला पत्र मैंने सन 1954 में लिखा था। कॉलेज में आने पर उनका सिंहावलोकन और कहानी के 55 के वार्षिकांक में उनकी कहानी और उससे भी अधिक उनका लेख मैं कहानी कैसे लिखता हूँ को पढ़कर वह विशेषांक अक्टूबर 54 में ही निकल गया था। फिर कुछ दिनों के तक उनके उत्तर की प्रतीक्षा के बाद यशपाल का कोई पत्र न आने पर मैं हताश होकर बैठ चुका था। फिर एक दिन अचानक एक पोस्ट कार्ड मुझे मिला, प्रकाशवती का लिखा हुआ। उसमें यह सूचना थी कि यशपाल को लिखा मेरा पत्र उन्हें मिल गया है। यशपाल तब बम्बई में थे और प्रकाशवती जी की सूचना अनुसार मेरा पत्र उन्हें भिजवा दिया गया था और यह भी कि वे वहीं से उत्तर देंगे। उसके बाद बहुत महीन अक्षरों में यशपाल का बम्बई से लिखा पत्र सचमुच मुझे मिला था। मुझे मिला वही उनका पत्र, पहला पत्र था। अच्छी तरह याद है कि उसे बहुत दिन तो जेब में डाले मैं अपने मित्रों और साथियों को दिखाते हुए इतराता फिरा कि यशपाल का पत्र है। उन्हें यशपाल का, जिन्होंने वायसराय के ट्रेन के नीचे बम रखा था। जो भी हो, वह पत्र यशपाल के पत्र में नहीं है। शायद वह इस लायक ही नहीं रह गया था कि अधिक समय तक सुरक्षित रह सके, लेकिन उससे आगे का रास्ता अवश्य खुला। फिर कई बरस बाद MA PVS अंग्रेजी की परीक्षा देकर सन 1959 की गर्मियों में जब मैं पहली बार लखनऊ गया, तब यशपाल के यहाँ भी गया, बिल्कुल अचानक किसी पूर्व सूचना के। लेकिन इस बीच मेरा उनसे पत्राचार बना रहा था और उनके कई पत्र मुझे मिल चुके थे। बरेली के एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता को विप्लव कार्यालय की पुस्तकें भी मेरी मार्फत आती थी और प्रकाशवती जी मेरे परिचय के आधार पर भुगतान बाद में ले लेती थी। इसमें एक बार ढील होने पर जब पुस्तक विक्रेता ने न तो उनका भुगतान किया और न ही उनके पत्रों का उत्तर दिया, उन्होंने एक पत्र सीधे मुझे लिखा था उस विक्रेता को चेताने की गरज से, जिसमें सीधे कानूनी कार्रवाई की बात भी उन्होंने लिखी थी। उसका असर भी तत्काल हुआ था। मुझे याद है सन 1956 में अमिता निकलने पर मेरी प्रति प्रकाशवती जी ने उसी विक्रेता को किताबों के साथ भिजवाई थी, उस पर मेरा नाम लिखकर। प्रायः ऐसा भी होता था कि मैं पत्र यशपाल को लिखता था, लेकिन उनके व्यस्त रहने या फिर बाहर होने की स्थिति में उसका उत्तर मुझे प्रकाशवती जी से मिलता था। इस पृष्ठभूमि में ही उनसे मेरी पहली भेंट 1959 की गर्मियों में हुई थी। तब यशपाल विप्लव प्रकाशन वाले बिल्डिंग में ही हीवेट रोड पर रहते थे। बाहर सड़क की ओर खुलने वाली बैठक के घंटे बजाने पर आनंद निकल कर आए। मेरे साथ एक मित्र भी थे। आनंद के अंदर जाने के थोड़ी देर बाद प्रकाशवती अंदर से आई थी। सिल्क की साड़ी और कायदे से मधे जुड़े में एक आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व की स्वामिनी सिंहावलोकन में मैंने उनका जो फोटो देखा था वह काफी पहले का था। तब वे चश्मा नहीं लगाती थी, लेकिन समय के संतराल और बड़ी हुई उम्र के बावजूद वे वहीं थी। क्योंकि हम दो लोग थे, मैंने अपना परिचय दिया और फिर वहीं बैठक में बैठकर कुछ बातें हुई। उन्होंने शायद मेरे आने के कारण और वहाँ ठहरने आदि के बारे में पूछा था। बेहद तेज गर्मी थी और दोपहर अभी भी ठीक से ढली नहीं थी। चाय को मना कर देने पर उन्होंने पानी मंगवाया। यशपाल को मसूरी जाने की सूचना भी उन्होंने दी बेटी किरण के साथ। प्रेस के काम की वजह से वे नहीं जा सकी थी, लेकिन बेटे के साथ कुछ समय बाद जाएंगी। मुझे हताश देखकर उनका यह कहना मुझे खूब याद है। सिंगल इनोट कामा, अरे बरेली कौन दूर है, अगली बार आने पर मिल ले। इनोट कामा, फिर मैंने तत्कालीन पेप्सू सरकार द्वारा यशपाल को भेंट किए गए अभिनंदन ग्रंथ की चर्चा की। अंदाजा कर वे मोटा सा काली रैक्सीन की जिल्द वाला ग्रंथ ले आई। मैं वहीं बैठकर उसके पन्ने पलट रहा था कि बोली, इसे साथ ले जाएं, आराम से पढ़ें और अगली बार आने पर लेते आएं। यशपाल से मिले बिना ही यह प्रकाशवती जी से मेरी पहली भेंट थी। फिर अगली बार उनसे सन 1963 में मिलना हुआ, महानगर वाले उनके निवास पर। इस बीच स्थिति थोड़ी बदल चुकी थी। 1962 में लहर के दिसंबर अंक में यशपाल पर प्रकाशित अपनी टिप्पणी से मैं बाकायदा आलोचना की राह पकड़ चुका था और उस टिप्पणी का भरपूर नोटिस लिया गया था। उसके बाद यशपाल ने मुझे पत्र लिखा था और कलकत्ता से प्रकाशित रूपलेखा के संपादक छेदीलाल गुप्त को रामविलास शर्मा के उत्तर में लिखने के लिए मेरा नाम सुझाया था। अपने पत्र में उन्होंने उस पत्र की प्रतिलिपि भी नथी की थी। उस टिप्पणी के बाद यशपाल की बहुत सी पुस्तकें प्रकाशपति जी ने भिजवाई थी। आगे भी यह क्रम चलता रहा और इस सब की व्यवस्था प्रकाशपति जी कर रही थी। अगस्त 1963 में मैं 2 दिन लखनऊ में रुका था। ठहरा डालीगंज में अपने एक संबंधी के यहाँ था। रोज सुबह को यशपाल के यहाँ चला जाता था, दिन भर वहीं रहता और शाम को लौटता था। प्रकाशपति जी तब 50 की पहुंची थी, लेकिन बहुत चुस्त दुरुस्त और सुरुचि संपन्न महिला। हल्के रंग की साड़ी पर मैच करता ब्लाउज, हाथ में छोटी सी घड़ी और सोने की 2 चूड़ियाँ, सलीके और सादगी से बांधा गया जुड़ा, पैर में प्राय चप्पल ही पहनती। सुबह का नाश्ता हम सब लोगों के साथ ही लेती और फिर अपना टिफिन लेकर प्रेस को निकल जाती। शाम को प्राय 6 बजे के आसपास लौटती। गर्मी और थकान का प्रभाव उनके चेहरे पर स्पष्ट नहीं होता था, जबकि वे थकी अवश्य होती थी। आते ही हाथ मुँह धोकर पहले वे चाय पीती थी, प्राय हमारे साथ ही, और फिर कुछ देर वहीं बैठकर गपशप करती थी। इसी बीच प्रेस संबंधी जरूरी सूचनाएं वे यशपाल को देती। प्रेस में जॉब वर्क भी होता था, लेकिन अधिकतर काम यशपाल की नई किताब की छपाई के अतिरिक्त पुरानी किताबों के पुनर्मुद्रण का चलता था। नई किताबों की छपाई आदि की व्यवस्था भी देखती थी। प्रूफ सामान्यतः यशपाल पढ़ते थे। वे इस ओर विशेष ध्यान देती थी कि किन किन किताबों के संस्करण समाप्त हो रहे हैं और उनमें किसका पुनर्मुद्रण पहले जरूरी है। प्रेस की सारी झंझटें, सप्लाई, लेबर, कागज, जिल्दबंदी और टैक्स आदि उन्हीं की जिम्मे थी। जब विप्लव निकलता था तो विज्ञापनों और उसकी वार्षिक सदस्यता तथा एजेंसी के लिए सारी भागदौड़ वे ही अधिकतर करती थी। बाद में जब तब कहती थी, विप्लव के लिए मैंने आपको बरेली का बहुत चक्कर काटे हैं। मैं उनके साथ प्रेस कभी नहीं गया, लेकिन प्रेस की समस्याओं की चर्चा वे जब तब घर पर भी करती थी। लिखने के लिए यशपाल के कागज से लेकर उनके सिगरेट, सिगार और ऐसी ही दूसरी व्यवस्था भी वे करती थी। इसी के साथ घर गृहस्थी की छोटी बड़ी जरूरतों को भी वे बहुत शांत और सहज भाव से निपटाती थी। वह सब जैसे उनकी आदत में शुमार हो, न उन्हें धोखा दिया जा सकता था, न ही बुली किया जा सकता था। यशपाल को मछली बहुत पसंद थी। शाम को खाने में वे जब तब उसे लेना पसंद करते थे, लेकिन मछली की पहचान यशपाल से भी ज़्यादा प्रकाशपति को थी। मेरे सामने एक बार एक आदमी ताज़ी मछलियाँ लेकर आया था। प्रकाशपति जी ने जिस तरह उन मछलियों में से कुछ छाटी थी, उनके बारे में उससे देर तक बात करती रही थी। उससे मैं ही नहीं, वह आदमी विस्मित था। उनका स्वभाव समझकर वह हर तीसरे चौथे दिन ताज़ी और अच्छी मछलियाँ लाता था, क्योंकि वह जान गया था कि अच्छी चीज़ देकर पैसों के लिए अधिक मोल भाव नहीं करना होता। बाद में रंग रोगन करने वाले मिस्त्रियों से कुछ और लोगों से भी मैंने उन्हें काम करवाते देखा था। काम एकदम चाक चौबंद और पैसे को लेकर कोई झिकझिक नहीं। न धोखा देकर उनसे कोई अधिक पैसे ले सकता था, न ही किए गए काम की झोल छिपा कर उन्हें भरमा सकता था। हमेशा लगता था कि हर मामले में जो और जितना चाहिए वे जानती। न वे दूसरों को दबाती थी, न ही अपना नुकसान उठाने को तैयार थी। इसलिए आदमी उनके यहाँ खूब निकले थे। उनके मालिक की एक टांग खराब थी, लेकिन वह वर्षों उनके यहाँ बना रहा। घर की नौकरानी जुबैदा कभी नौकरानी जैसी लगी ही नहीं। वो तो उनकी नौकरानी भी थी और सहेली भी। उनके खान पान, हारी बीमारी, हर चीज का ख्याल वह रखती थी। कनाडा जाने पर वे पूरा मकान उसी पर छोड़ गई थी। उसी दौरान एक बार मेरे अचानक वहाँ पहुँचने पर उनकी अनुपस्थिति में ही उसने लगने ही नहीं दिया कि वे नहीं हैं। प्रकाशपति की छवि आमतौर पर सख्त, रूखी और व्यवसायी स्त्री की थी। व्यवसाय में दबना वे नहीं जानती थी और अपने डूबते हुए पैसे की वसूली के लिए जब तक उन्हें परेशान और दुखी होते भी देखा था। वे चाहते थे कि परिश्रम और सिर्फ परिश्रम के बल पर ईंट ईंट जोड़कर जो इमारत उन लोगों ने खड़ी की है, वह कहीं से कमजोर और पोली न रहे। यशपाल शुरू में प्रायः ही जिक्र करते थे कि यूनिवर्सिटी के छात्र अपने आंदोलन के पर्चे आदि सामान्यतया उनके प्रेस में ही छपाते थे। उन्हें लेने आते वक्त वे इस बात का ध्यान रखते थे कि तब वहाँ प्रकाशवती मौजूद न होकर यशपाल हो। यशपाल से उन पर्चों को आधे दर भुगतान या उधार के आश्वासन पर उठाया जा सकता था, जबकि प्रकाशवती के साथ यह संभव नहीं था। जितना पैसा तय हुआ है उसका पूरा भुगतान किए बिना उनसे चीज नहीं ली जा सकती थी। अपने बच्चों को वे बहुत प्यार करने वाली माँ थी, लेकिन फिर भी कुछ था जो बच्चे किरण और आनंद उनके मुकाबले यशपाल से अधिक सहज और खुले थे, कम से कम अपने व्यक्तिगत संदर्भ में। यशपाल के निधन के बाद जब मैं लोक भारती वाली किताब के सिलसिले में लखनऊ में था, मॉन्ट्रियल से किरण भी आई हुई थी। यशपाल के निधन के समय वे लोग नहीं आ सके थे। खाने के बाद चांदनी रात में लान में तहरते हुए देर तक हम लोग उनके घरेलू और पारिवारिक प्रसंगों पर बात करते रहे थे। वहीं एक और लान में यशपाल की अस्थियां दबाकर एक छोटा सा चबूतरा बना दिया गया है। किरण जैसे किसी जादुई स्पर्श से अपने अतीत के बीचों बीच थे। फिर वह अचानक भरे और भर्राए हुए गले से बोली, एक बात आपको बताऊं मधुरेश जी, जब मेरा सुदर्शन से अफेयर शुरू हुआ तो मैं इसे घर में किसी को बताना चाहती थी। बहुत कोशिश करे कि भी मैं मम्मी को नहीं बता सकी। वैसे उधर से कोई डर नहीं था, लेकिन पापा को लेकर मैं अधिक श्योर थी। उन पर जैसे हमेशा विश्वास किया जा सकता था। ऐसा नहीं कि प्रकाशपति की भूमिका इस प्रसंग में भिन्न थी, लेकिन गहरे प्यार के बावजूद शायद उनकी अभिव्यक्ति कहीं बहुत संयत और अनुशासित थी। इसीलिए आशंका की हल्की सी गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। घर में उन्होंने बच्चों को बहुत उदार और वर्जनामुक्त वातावरण दिया था। सिगरेट पीते समय किरण शुरू में मुझे व्याकुल करती थी, लेकिन तब तक मैं सिगरेट और पाइप छोड़ चुका था। उन्हें मना करते हुए मुझे शर्म सी लगती थी। बाद में मीना को मैंने प्रायः ये घर पर स्कर्ट पहने और कभी कभार बियर लेते भी देखा था। प्रकाशवती की कड़ियल और किसी कदर ऊपर से रूखे व्यक्तित्व के नीचे अपनत्व और ममता की एक अंतरधारा हमेशा बहती रहती थी। छोटी छोटी बातें हैं जिनके ध्यान रखने से लगता है वे वही नहीं थी जो सिर्फ ऊपर से दिखाई देती थी। यह संभव है कि घर से बाहर निकलकर काम करने के लिए वह अपने प्रसंग में अपनाई गई एक मुद्रा ही तो जिसे वे रणनीति के तौर इस्तेमाल करती रही हैं। सन 1973 में यशपाल के पत्र नामक अपनी पुस्तक के लिए यशपाल के एक लंबे संस्करण की तैयारी में मैं कई दिन वहां रहा था। संयोग से तब बालकृष्ण राव भी वहां आए हुए थे। आमतौर पर घर के जिस अतिथि कक्ष में मैं रुकता था उसमें वे रुके थे और मैं रसोई के पास वाले एक अन्य कमरे में था। रात में कुछ बादल थे, हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी, इसी कारण सुबह को हवा थोड़ी ठंडी होने से मैंने पंखा बंद कर दिया था। बहुत सुबह चाय लेकर प्रकाशवती जी मेरे कमरे में आई और पंखा बंद देखकर बोली, अरे गर्मी में पंखा बंद पड़ा है। फिर चाय मेज पर रखकर उन्होंने पंखा चलाया। मैं जगा हुआ ही था। मैंने उन्हें बताया कि अभी थोड़ी देर पहले ही हवा थोड़ी ठंडी लगने पर मैंने उसे बंद कर दिया था। तो वे बोली, अब तो खूब गर्मी हो रही है, देखिए आपको पसीना आ रहा है। फिर वे चाय लेकर राव साहब के कमरे की ओर चली गई थी। एक अन्य प्रसंग थोड़ा और बात का है। तब किताब के सिलसिले में इलाहाबाद जाना था। मेरी इच्छा थी कि जिन लोगों से नए आलेख लिखाए जाने हैं उनसे एक बार स्वयं मिलकर बात करूं। दो दिन में लखनऊ का काम निपटाकर मुझे इलाहाबाद जाना था। गर्मी के दिन थे, लेकिन गाड़ी सुबह जल्दी ही थी। रात में ही तय हो गया था कि मैं 5 से पहले उठ जाऊंगा ताकि समय से निकल सकूं। मैंने थोड़ा मार्जिन इसलिए रखा था कि टेम्पो से स्टेशन पहुंचकर टिकट आदि लेने का समय बचा रहे। जब मैं तैयार होकर निकलने को था वे अंदर से आई। उनके हाथ में लोक भारती के दिनेश चंद्र के लिए लिखा गया पत्र था और एक छोटा सा पैकेट पॉलीथीन की थैली में। उसे मुझे देते हुए बोली, जल्दी से कुछ सैंडविच बना दिए हैं, गाड़ी देर से पहुंचती है, पास होने पर रास्ते में खा लेंगे। बात करते हुए मुझे छोड़ने जब वे बाहर आई तभी मालूम पड़ा कि शाम को ही मुझे स्टेशन पहुंचाने के लिए कहकर उन्होंने ड्राइवर को बुला लिया था। फिर उसे समझाते हुए बोली, गाड़ी खड़ी करके टिकट ले लेना और ट्रेन पर बिठा कर ही आना। छोटे छोटे ऐसे कई प्रसंग हैं लंबी अवधि जैसे मैदान में छिदरे दिखे। लगता है कि उनका ऊपर से दिखने वाला रूखापन अपने काम के प्रति बेहद सजग और चाक चौपन रहने की कोशिश का ही एक स्वाभाविक परिणाम था। कठिन संघर्ष झेलकर उन्होंने वह सब खड़ा किया था और यह समझ अपने इस संघर्ष से इन्होंने प्राप्त की थी कि व्यवसाय को व्यवसाय की तरह ही चलाया जा सकता है। इसीलिए जीवन और व्यवसाय के घाल में से व्यवस्थित और बचने की इस कोशिश में जब तब अपने रूखा होने का प्रभाव डालती थी। इसकी चिंताएं किए बिना की लोग उनके बारे में क्या सोचते और मानते हैं। इसके बाद फिर प्रायः 2 वर्ष बाद लोक भारती वाली किताब की पांडुलिपि लेकर जाना हुआ था। तब प्रदीप सक्सेना भी मेरे साथ थे। कायदे से हमारी ट्रेन दोपहर 12 बजे पहुंची थी, लेकिन वह लेट थी और उनके घर पहुंचने में 3 बज गए थे। फाटक खुलने की आवाज़ सुनकर वे स्वयं बाहर आए, फिर हमें देखकर बोली, कहाँ रुक गए थे? हमने तो घंटों आपका इंतज़ार किया, खाना भी अभी थोड़ी देर पहले खाया है। फिर आदमी भेज कर पास के रेस्टोरेंट से उन्होंने डोसे मंगवाए, सामने बैठकर पूछ कर खिलाती रही। 1-2 चीज़ें रसोई में से ले आई थी। हमारे खा चुकने के बाद उठते हुए वे बोली, अब थोड़ी देर आराम कर लें, शाम को बैठकर बात करेंगे। किताब की सामग्री से वे संतुष्ट थी। जो एक दो लेख अभी रह गए थे उन्हें लेकर शामिल करने की जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं ली। अगले दिन सुबह वापसी में बहुत जल्दी ही सब्जी पराठे का नाश्ता तैयार करवाकर फिर पास बिठाकर खिलाया। बीच बीच में ठीक से खाने का आग्रह करते हुए उसी रात मलिहाबाद से आए बनारसी लंगड़ा आम काट काट कर प्लेट में रखी जाती थी। अपने भाव और आवेगों को संयत रखकर भी कैसे आत्मीय और अंतरंग हुआ जा सकता है, यह मैंने प्रकाशवती जी से बहुत निकट से देखा था। यह भी संभव है कि इसके पीछे की दुनियादारी के उनके सामने अपने लंबा अनुभव रहे हों और फिर इसे उन्होंने अभ्यास को ढाल लिया हो। उम्र में वे मुझसे करीब 25 वर्ष बड़ी थी, लेकिन साथ होने पर आगंतुकों को मेरा परिचय वे हमेशा दोस्त बताकर देती थी। एक समय मेरा बेटा अनुराग भी अपनी पोस्टिंग पर कई साल लखनऊ रहा। वह इंदिरा नगर में रहता था और तो मेरे वहाँ होने पर उसके साथ कई बार उनके यहाँ जाना हुआ, जब तक वे मुंशी पुलिया वाले चौराहे पर मिल जाती थी। एक बार हमें कुछ खरीदारी करते देख उन्होंने गाड़ी रुकवा कर लगभग चकित कर दिया था, तब मेरी पत्नी भी साथ थी। इस बार तब तक मेरा उनकी ओर जाना भी नहीं हुआ था, मेरे वहाँ होने की कोई सूचना भी उन्होंने नहीं की। गाड़ी से निकलकर उस भीड़ भरे इलाके में उन्होंने पहले मुझसे और फिर परिचय देने पर फिर पत्नी से बकायदा हाथ मिलाया था। बिना बताए चुपचाप बेटे के पास आकर ठहर जाने का उलाना दिया था और हम लोगों को जल्दी ही घर आने को कहा था। लखनऊ में बेटे के शुरू के दिनों में एकाध बार वह मेरे बिना भी उनसे मिला था। वह बताता था कि वे हमेशा निसंकोच आते रहने को कहती थी और चाय पिलाए बिना आमतौर पर नहीं आने देती थी। शुरू शुरू में मकान की तलाश में अपने 1-2 परिचितों और संबंधियों को मकान दिखाने स्वयं उसके साथ गई थी। यशपाल के निधन के बाद मेरा मन वहाँ जाने को नहीं होता था। मानसिक रूप से मैं यशपाल के बिना वहाँ रहने की स्थिति स्वीकार ही नहीं कर पाता था। उनका निधन 26 दिसंबर 1976 को हुआ था। इसकी सूचना अगले दिन मुझे अखबार से मिली थी। तब मैंने प्रकाशपति जी को संवेदना पत्र लिखा था। बाद में अगले वर्ष अप्रैल में मैं लखनऊ गया था, तब भी लोक भारती वाली किताब योजना बनी थी। उसके बाद फिर मैं 2 वर्ष नहीं गया। जाने पर उलाने जैसे स्वर में बातों के बीच उन्होंने कहा था, मधुरेश जी आपने तो अब आना ही बंद कर दिया है। उत्तर में मैंने वही कहा जो सचमुच मेरे मन में था, यशपाल जी के बाद अब आने को बिल्कुल मन नहीं करता, अजीब सा लगता है। इस स्थिति में कोई व्यक्ति आसानी से भावुक हो सकता था, लेकिन उनकी आवाज़ वैसे ही शांत संयत थी। हुआ तो है, लेकिन काम कौन सा रुकता है, सब चल ही रहा है। फिर अनुराग के वहाँ रहते मेरा लखनऊ जाना बढ़ गया था। उस बीच प्रकाशपति जी के साथ तो रुकना या रहना नहीं हुआ, लेकिन मिलना हर बार होता था। उन्होंने कभी टूटे हुए और हताश स्वर में यशपाल की चर्चा नहीं की। मुझे लगता है कि अपने को संयत रखकर निरुद्वेग रहने का उनका अभ्यास यहाँ भी उनके काम आया था। उनकी बेटी तमाद बहुत पहले ही कनाडा में बस चुके थे। आनंद के सूत्र भी यशपाल के सामने ही वहाँ से जुड़ चुके थे। यशपाल के जाने के बाद प्रकाशवती जी अकेली पड़ गई थी। शुरू में मीना और उनके बच्चे उनके साथ थे, फिर वे भी आनंद के साथ कनाडा चले गए। उस इतने बड़े मकान में वे जुबैदा और माली के साथ रहती थी, बड़ी उम्र में घुटनों और आँखों के परेशानी के साथ, लेकिन बड़ी उम्र को मैंने उन्हें कभी बोझ बनते नहीं देखा। कनाडा जाकर घुटने का ऑपरेशन उन्होंने तब कराया जब 80 के आसपास थे। अंत में आँखों की तकलीफ ने उन्हें बहुत परेशान किया। डॉक्टर के गलत इलाज से उनकी रोशनी करीब करीब जाती रही थी। पहले वह घर आंगन में छड़ी लेकर चल लेती थी, बाद में वह भी बंदिशा हो गया। इतनी जीवंत और सक्रिय रूप से जीने के बाद उनकी इस असहायावस्था और लाचारी का अनुमान उनके इस पत्र में लगाया जा सकता है जो लिखवाया किसी और से गया है और किसी बच्चे की तरह कांपते और लहरियादार अक्षरों में हस्ताक्षर उनके हैं। लखनऊ 16/12/1999। प्रिय मधुरेशी, आपका पत्र मिला। मेरी स्थिति आपने पढ़ ली है। मैं अब अपाहिज हूँ। मन में बड़ी खीज उठती है अपने पर। कभी कभी दिल में आता है कि जो सामने आए उसे दो चार थप्पड़ लगा दो, पर आप जानते हैं ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरी खींच का प्रदर्शन है। बेबस हूँ। मैंने अपनी पुस्तक की समीक्षा हंस में पढ़ी थी। आजकल मैं पत्रों में उलझी रहती हूँ और कुछ भी काम नहीं कर पाती। जब ठीक उत्तर नहीं दे पाती तो बेसब्र हो जाती हूँ। आप यशपाल जी पर कुछ लिखने की सोच रहे हैं, इस विचार का स्वागत है। कभी कभी पत्र लिखा करें, प्रगति जानते मुझे बड़ा संतोष हो। लगातार बेसब्री से खींच उठती रहती है, पर अपने पर काबू पाती हूँ। मेरी ओर से घर में सबको नमस्कार करें। अनुराग को प्यार, आपकी प्रकाशवती पाल। अपनी पुस्तक दिव्या का महत्व मैंने उन्हीं को समर्पित की थी। यशपाल, किशनगणी, सहकर्मणी और साथी लिखकर जो वे सचमुच थी। प्रकाशक ने जब उसकी प्रतियां उन्हें भिजवाई वो इस हालत में नहीं थी कि उसे पढ़ सकें और प्राप्त सूचना भी दे सकें। बाद में आनंद से ही उसके पहुंचने और प्रकाशवती जी के बिगड़ते हुए स्वास्थ्य की जानकारी मिली थी। बहुत से लेखकों की पत्नियों की तरह मैंने प्रकाशवती जी को कभी यशपाल की पुस्तक के बारे में कोई गंभीर चर्चा करते देखा सुना हो याद नहीं। उन्होंने कभी इस पर भी गर्व नहीं किया कि वे उनकी पहली पाठिका थी जो वे सचमुच थी। यशपाल के निधन के बाद वे प्रायः 25 वर्ष जीवित रहे, जो निश्चित रूप से बड़ा और लंबा समय था। लेकिन उनके संदर्भ में उनकी वैसी भूमिका नहीं थी जैसे रंगे राघव, हरभूषण अग्रवाल, देवीशंकर अवस्थी, शाही आदि के संदर्भ में उनकी पत्नियों की रही है। यशपाल के संबंध में उन्होंने उतना कुछ भी नहीं किया जितना राहुल सांकृत्यायन के संबंध में कमला सांकृत्यायन ने किया था। अब धर्मवीर भारती के संदर्भ में पुष्पा भारती कर रही हैं। मैंने कई बार उन्हें उकसाया कि वे यशपाल के संस्मरण लिखें, खासतौर से दल में उनकी क्रांतिवारी गतिविधियों और बाद में एक लेखक के रूप में उनके संघर्ष की पृष्ठभूमि पर। शिवरानी देवी की पुस्तक प्रेमचंद घर में जिक्र भी उनसे किया। अपनी संपादित पुस्तक क्रांतिकारी यशपाल, एक समर्पित व्यक्तित्व में यशपाल के क्रांतिकारी रूपांतरण की प्रक्रिया पर मैंने उनसे लिखने को कहा था। उन्होंने लिखा भी, लेकिन वह वैसा नहीं था जैसा मैं चाहता था या जिसके बारे में उनसे विस्तार से बात हुई थी। कई बार इसकी चर्चा भी उनसे पर्याप्त गंभीरतापूर्वक हुई थी कि धीरे धीरे विप्लव इस लायक नहीं रह जाता रहा है कि उसकी फाइलें हाथ में लेकर उसे पढ़ा जा सके। 60 वर्ष पूर्व न्यूज प्रिंट पर छपे होने से उसके पन्ने टूट जाते हैं। यशपाल जी की ढेरों महत्वपूर्ण राजनीतिक टिप्पणियां संपादकीयों के रूप में लिखित आज भी उसकी फाइलों में दबी पड़ी हैं। मीना की अनिच्छा के बावजूद कुछ समय के लिए वे फाइलें एक ही सेट होने के कारण जो सचमुच दुर्लभ थी अपनी जिम्मेदारी पर प्रकाशपति पाल ने मुझे दी ताकि मैं उन्हें पढ़कर जरूरी हिस्से को जेरोक्स करा सकूं। अपने पास है यशपाल के अनेक शोध पत्रों से मैंने हमेशा ही कहा है कि विप्लव को छोड़कर उन पर कोई सार्थक काम नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका लक्ष्य डिग्री के आगे कभी नहीं बढ़ा। प्रकाशवती जी उनके संकलन, संपादन और प्रकाशन की दिशा में काफी कुछ कर सकती थी, इसकी बेहद जरूरत थी, लेकिन उन्होंने यह नहीं किया। आज भी यह काम ऐसा ही पड़ा। शुरू में मीना और आनंद का इरादा विप्लव के अंकों की कम से कम 500 प्रतियों का कनाडा में जेरॉक्स कराने का था, लेकिन वह कभी भी पूरा नहीं हुआ। ऐसा भी नहीं कि प्रकाशवती जी उसके महत्व को समझती नहीं थी, लेकिन इस ओर की वे गंभीर दिखी नहीं, कारण जो भी रहे हैं। वैसे बातचीत में कई बार यशपाल अपनी रचनाओं के संदर्भ में अपनी राय का उल्लेख करते थे और उनके इस उल्लेख से लगता था कि वे उसे खासा महत्व भी देते थे। रचना के पठनीयता को, जिसे वो रचना का एक आवश्यक घटक मानते थे, वे प्रायः ही प्रकाशवती जी की कसौटी पर कसते थे। लिखे जाते और फिर प्रूफ की प्रक्रिया में वे एकाधिक बार उसे पढ़ती ही थी। शुरू के दिनों में झूठा सच पर बात चलने पर जब मैंने उनसे पहले खंड में अंकित जीवन की संवेदना और हार्दिकता की चर्चा की थी, इसकी तुलना में दूसरा खंड मुझे ढीला बाँसों और जोड़ों से अधिक बोझिल लगा था, जो अपने बचाव में यशपाल ने प्रकाशवती का ही उल्लेख किया था। प्रकाशवती जी को उसका दूसरा खंड ही अधिक पसंद हो सकता है यह सच हो, लेकिन यशपाल के ऐसे उल्लेख के बावजूद वे बहुत विश्वसनीय नहीं लगते। यशपाल पर अनेक आलोचनात्मक लेखों और पुस्तकों की जानकारी मैंने ही उन्हें दी थी। प्रकाशित होने पर यशपाल से संबंधित शोध प्रबंध अलबत्ता उन्हें मिल जाते थे, लेकिन पत्रिकाओं में छपे लेखों की जानकारी उन्हें प्रायः नहीं होती थी। जो शोध प्रबंध लिखे जाते थे उनके लेखक विप्लव और दूसरी मूल सामग्री की चिंता नहीं करते थे। वे उपलब्ध सामग्री के आधार पर एक नया शोध प्रबंध तैयार करने के प्रवृत्ति से ग्रस्त थे, लेकिन प्रकाशवती जी प्रायः उनकी संख्या को यशपाल के महत्व से जोड़कर देखती थी। कम लोगों को मालूम है कि शुरू में वे लिखती भी थी, बाद में भी बच्चन प्रसंग से क्षुब्ध होकर लाहौर से लखनऊ तक नामक अपने संस्मरण पुस्तक उन्होंने लिखी थी। मैंने कभी उनसे पूछा नहीं, लेकिन मुझे लगता था कि यशपाल के नाम पर पाल ही अपने नाम से जोड़कर प्रकाशवती पाल बनी थी। विप्लव से उनके और यशपाल के बीच कैसे काम जैसे काम का एक सुस्पष्ट विभाजन हो गया था। शुरू में लेखन और संपादन के साथ यशपाल प्रेस का काम भी देखते थे। आर्थिक संकट के दौर में कुछ और भी छिटपुट काम के लिए, मसलन लैंप शेड और पर्स आदि बनाकर थोक में बेचते थे। प्रकाशवती ने शुरू में कभी कराची सिद्धांतों के डॉक्टरी का डिप्लोमा भी लिया था। लखनऊ में कुछ समय वह काम भी उन्होंने किया, लेकिन जल्दी ही वे सब कुछ छोड़कर विप्लव की प्रबंध व्यवस्था विक्रय प्रसार में लग गई। देश और यशपाल की पुस्तकों का प्रकाशन ही उनका मुख्य काम हो गया। धीरे धीरे यशपाल के लेखन की सारी व्यवस्था जैसे उनके जिम्मे हो गई। वैसे बाद में एक बार यशपाल के जेल जाने या फिर अन्य कारणों से विप्लव का संपादन भी उन्होंने अस्थायी रूप से किया। उनकी लिखे लेख और संपादकीय आज भी विप्लव के फायदों में देखे जा सकते हैं, लेकिन वह कभी उनका मुख्य काम नहीं था। उनके संघर्ष और क्रांतिकारी जीवन की पृष्ठभूमि को केंद्र में रखकर ही मुक्तिबोध ने कभी इन लोगों पर एक उपन्यास लिखने की इच्छा की थी, जो कभी पूरी नहीं हुई। यशपाल के साहित्य और प्रकाशन से न केवल जैसे तैसे गुजारा भर का कर लेने, बल्कि ढंग से और व्यवस्थित रूप से रहने की प्रेरणा बहुतों ने ली थी। उनके साथ के लेखकों में अश्क और जनेन्द्र उन्होंने देख कर ही अपने प्रकाशन शुरू किए। बाद में राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर आदि से मिलकर अक्षर प्रकाशन की स्थापना की और शुरू में भी काफी सक्रिय भी रहे। यशपाल यदि लेखक के रूप में पहुंचों के प्रेरणा पुरुष थे, तो उनके साथ सर्वत्र सदैव प्रकाशवती भी थी। प्रकाशवती को छोड़कर जैसे यशपाल के बारे में सोचा ही नहीं गया। यदि शायद प्रकाशवती होने का मतलब था, मैंने इस पर उन्हें दुखी होते भी नहीं देखा कि कभी वो लेखिका थी और पत्रिका पेश और यशपाल के पुस्तकों की व्यवस्था में खप कर सब कुछ छूट गया। अपनी जिस भूमिका को उन्होंने स्वीकार किया, वे उससे पूरी तरह संतुष्ट थी और उसी को अपना मिशन बनाकर वे जी। इसीलिए उनके जीवन का सबसे बड़ा हादसा साथी प्रेस की बर्बादी और उनके परिणाम स्वरूप विप्लव प्रकाशन का बंद हो जाना था। इतना विचलित मैंने उन्हें न बच्चन वाले प्रसंग में देखा था, न यशपाल के निधन के बाद। एक से धीरे धीरे उभर ली थी और बाद में अपने ढंग से उसका उत्तर भी उन्होंने दिया, और दूसरे के लिए यशपाल की लंबी और सांघातिक बीमारी को देखते शायद उन्होंने मानसिक रूप से अपने को तैयार कर लिया था, लेकिन प्रेस और प्रकाशन के बंद होने से जैसे वे नकारा और लुंज हो गई थी। इस हादसे ने उनकी सारी सक्रियता को जैसे सूख लिया था। प्रकाशवती लाहौर के एक बहुत संपन्न व्यवसायी परिवार से थे। घर से निकलकर वे क्रांतिकारी दल में शामिल हुई थी और खूब जानबूझकर उन्होंने अभाव, कष्टों और जोखिम का रास्ता चुना था। यशपाल की गिरफ्तारी के बाद दल के संचालन की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी। बाद में जब वे स्वयं दिल्ली में गिरफ्तार हुए, तो तत्कालीन अखबारों के लिए एक बड़ी सुर्खी थी। उनकी फोटो के साथ उनकी गिरफ्तारी खबर की यह कटिंग बाद में लखनऊ से लेकर आया था, लेकिन फाइलों में कहीं दब जाने से वह फिर मुझे मिली नहीं। दल में अनेक लोगों के विरोध के बावजूद उन्होंने यशपाल से प्रेम किया और बाद में यशपाल के बरेली सेंट्रल जेल में रहते हुए 1936 में उनका विवाह भी हुआ। यह प्रेम प्रसंग आगे चलकर बहुत दिनों की प्रेरणा बना। अनेक लेखकों ने प्रेम विवाह भी किए। सार्त्र और सिमोन द बोवार की तर्ज पर हिंदी लेखकों के बीच लिविंग टुगेदर की अवधारणा भी विकसित हुई। लोगों ने पारिवारिकता को गैर जरूरी और रचनात्मकता में बाधक मानते हुए खूब छूट लेने की कोशिश की थी। यशपाल और प्रकाशवती ने अपने प्रेम को निभाया और जैसी गरिमा एवं जिम्मेदारी के साथ उसे आजीवन बनाए रखा, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण हिंदी में आज भी दुर्लभ है। प्रकाशवती जी का सबसे बड़ा महत्व यह है कि स्वयं सक्रिय रहकर उन्होंने कई परवर्ती पीढ़ियों को भी सक्रिय रखा। वे उस धातु की बनी थी, सक्रियता छींचने पर जो आदमी के जीवन को ही बेमानी कर देती, ऐसा जीवन में अधिक नहीं जी सकती थी। राजनीतिक कट्टरतावाद, सांप्रदायिकता, उन्माद और बाजारीकरण के इस क्रूर और अमानवीय दौर में उनका हश्र वही हुआ जो ध्येय और लक्ष्य के लिए निष्ठापूर्वक समर्पित हर क्षेत्र में लोगों का हो रहा है। उनका निधन कहीं कोई सूचना नहीं बना और चुपचाप और सन्नाटे में आई मौत थी। उसकी सूचना दो दिन बाद सुधीर विद्यार्थी ने मुझे फ़ोन पर दी थी। न्यूज और संचार मीडिया के लिए भी एक गैर जरूरी खबर थी। ब्रिटिश दौर में जब अखबार बहुत कम थे वे एक बड़ी खबर थी और आज वह बेहिसाब अखबारों और न्यूज चैनलों की भीड़ है, वे कहीं कोई खबर नहीं बनती। उनका इस तरह जाना आज के दौर में बड़े रचनात्मक लक्ष्यों के हसर पर पीकी और विचलित कर देने वाली टिप्पणी है। यह और भी विडम्बनापूर्ण इसलिए है कि उसकी चंद महीने बाद यशपाल जन्म शताब्दी समारोह शुरू होने को था। धीरे धीरे ऐसे लोगों की संख्या भी कम होती गई जो यह जानते थे कि यशपाल के निर्माण और विकास में प्रकाशवती की वास्तविक भूमिका क्या थी और कैसी थी।